आप देखिए कि इन आयतों में हमने ईमान वालों की अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की बात देखी कि वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह, कि ईमान वाले अल्लाह ताला से मोहब्बत में शदीद होते हैं। थोड़ी सी इस पे बात करेंगे कि मोहब्बत जो है वो इंसान को अल्लाह ताला के करीब कैसे करती है, या ईमान का बढ़ना या घटना अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत का ज़रिया कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें मोहब्बत को भी समझना है। मोहब्बत क्या होती है? हब ये है कि इंसान जो चीज़ उसे पसंद हो उसको चाहने लगे। अमूमन कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पे लोगों से मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत होने की एक वजह है लस्ट। जिस चीज़ में लस्ट मिली, ख्वाहिश पूरी हुई, उससे मोहब्बत की। खाने की ख्वाहिश होती है, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा सिर्फ अपनी जज्बाती तस्कीन के लिए किसी से मोहब्बत कर ली जाती है, लेकिन ये मोहब्बत बहुत ही नापायदार होती है, क्योंकि ख्वाहिश और लस्त तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, एक दूसरी चीज़ की ख्वाहिश शुरू हो जाती है। लिहाजा वो मोहब्बतें जो ऐसे जज्बात पे उठती हैं वो ज़्यादा देर नहीं रहती। एक दूसरी वजह होती है किसी से मोहब्बत करने की मुफाद, फ़ायदा हासिल करना, बेनिफिट। किसी से फ़ायदा मिला, आपको उससे मोहब्बत हो गई, फ़ायदा नहीं मिला तो आपने उसको उठा के फेंक दिया। ये मोहब्बत भी बस वक्ती होती है। आज के दौर की दोस्तियां जो ख़ास तौर पे लड़कों और लड़कियों के बीच में हैं, ये पहली दो किस्म की मोहब्बतों पे हैं। या तो ख्वाहिश की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत हो गई, उसकी आंखें प्यारी लगी, उसके बाल अच्छे लगे, और सो ऑन। और मीडिया ने सिर्फ इसी मोहब्बत को प्रमोट किया कि जिसकी वजह से अगर शादियां हुई भी तो बहुत जल्दी नाकाम हो गई। आज के दौर में बहुत सारी शादियों के नाकाम होने की वजह यह है कि शादियां होती ही या सिर्फ लस्ट के नाम पे हैं या बेनिफिट के नाम पे। लेकिन एक तीसरी मोहब्बत होती है, और वो होती है कि किसी खास किरदार से मोहब्बत करना, उसके किरदार की वजह से, उसकी शख्सियत की वजह से, या उसकी ज़ात को इस तरीके से देखना कि उसके ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। ये मोहब्बत दूसरी दो मोहब्बतों की निस्बत पायदार होती है। लेकिन देखा जाए तो ये भी बाकी नहीं रहती। मसलन ये मोहब्बत किससे होती है? आइमाए कराम से, मुहद्दिसीन से, सहाबाए कराम से, अंबियाए कराम से हम मोहब्बत महसूस करते हैं। क्यों? कि इनके ज़रिए से हम अल्लाह ताला का कुर्ब पाते हैं। इसी तरह अगर किसी को उस्ताद से इसलिए मोहब्बत होती है कि उसने उसको अल्लाह ताला से मिलाया और उसकी जहालत दूर की, एक ख़ास हद तक प्रोटोकॉल में रहते हुए ये मोहब्बत भी जायज़ है। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों में खो के रह जाना जो अल्लाह की मोहब्बत दिलाएं, ये दुरुस्त नहीं है। लोगों का ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है कि उन लोगों की मोहब्बत में खो जाते हैं जो असल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ लेके जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक ईमान वाले की अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है उसमें ये तीनों सोर्सेज आ जाते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों है? क्योंकि उससे फ़ायदा लेते हैं। सुबह शाम रात दिन अल्लाह ताला से बहुत कुछ फ़ायदा लिया जाता है। फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत की एक लज्जत होती है, इसको मिठास कहते हैं, हलावतुल ईमान, ईमान की मिठास होती है। और इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफात, उसकी कुदरतें, उसकी कायनात में फैली हुई निशानियाँ, इन सबको देख के अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। तो आप कह सकते हैं कि ईमान क्या है? अल्लाह ताला की हुब्बे शदीद। जिस बंदे को अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत पैदा होती है वही असल में ईमान के दर्जे पे है। इसके बाद बाकी मोहब्बतें इससे नीचे हैं। लफ्ज़ अशद बता रहा है कि अल्लाह के माँ सिवा से मोहब्बत करना बुरा नहीं है। आप माँ बाप से मोहब्बत कर सकते हैं, आप माल से मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से मोहब्बत कर सकते हैं, कपड़ों से कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इनमें से कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना आए। नमाज नहीं पढ़े इसलिए कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये है अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा उस दूसरे की मोहब्बत का दिल में आ जाना। अल्लाह की मोहब्बत एक नंबर पे रहे, इंशाल्लाह ताला बाकी सब नीचे रहेंगे। सूरह तौबा की आयत 24 में इस आयत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से वाज़े किया गया कि जिसमें एक लंबी फहरिस्त बता दी कि कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे शौहर, तुम्हारे कुंबे कबीले और माल, तुम्हारे घर अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से तुम्हें ज़्यादा प्यारे हैं तो फिर तुम इंतज़ार करो। तो हम सब ने अपने दिल का जायज़ा लेना है कि क्या मैंने अपने दिल के कीमती जज्बात उसको दिए जिसने मुझे सब कुछ दिया। और मेरे दिल का ये हाल तो नहीं है कि जिसमें जिसने दिया उसी से मैं दूर हूँ। मैं किस मोहब्बत से अल्लाह के रास्ते में देती हूँ, किस मोहब्बत से अपना वक्त लगाती हूँ। और इस मोहब्बत को मांगना भी सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं में से चंद दुआएं ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को मांगने की हैं। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं सवाल करती हूँ आपसे आपकी मोहब्बत का, और उस अमल की मोहब्बत का जो आपसे करीब कर दे, और उस शख्स की मोहब्बत का जो मुझे आपके करीब कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। और एक जगह आता है कि अल्लाह मुझे आपकी मोहब्बत हर उस चीज़ से प्यारी है। ओ हुब्बा का हब्बा इलैया मिन नफ्सी, मेरे नफ्स से, मैं माली, मेरे माल से ज़्यादा मुझे आपसे मोहब्बत हो। इसी तरह तशहुद की दुआओं में भी नबी सल्लम से कुछ दुआएं मिलती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे यहाँ कि जिसमें इंसान ये तड़प के कहता है कि अल्लाह तेरी मोहब्बत मुझे सबसे ज़्यादा हो जाए, इसके बरक्स किसी और के साथ अल्लाह वाले जज्बात रखते हुए, माबूदियत के जज्बात रखते हुए मोहब्बत करना ये दुरुस्त नहीं है। अब इन आयात में हमने देखा कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात हुई, कुछ लोगों के जुल्म की बात हुई जिन्होंने जाहिर परस्ती को अपना शार बनाया और नज़र आने वाले सहारों को देखकर उन्हीं में खो गए। कल क़यामत के दिन वो एक दूसरे से बेजार होंगे और ख्वाहिश करेंगे कि काश एक बार हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए। अब यहाँ तक बात हो के आगे आयत नंबर 168 में हलाल और हराम की बातें, इनका रब्त है पिछली आयतों से कि किसी को एकदम हलाल और हराम के मसाइल में उलझाने से पहले अल्लाह तला की पहचान करा दो। और हकीकत है कि जब आप लोगों को अल्लाह की पहचान करवा देंगे ना, तो फिर उनको ये नहीं कहना पड़ेगा ये करो या वो करो या ये ना करो, बल्कि वो खुद ही आपसे पूछेंगे कि बताएं हम क्या करें कि हमारा रब हमसे राजी हो। और ये अमल हमें सहाबा कराम की ज़िंदगी में मिलता है, खुद आके पूछा करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला बंदे की किस चीज़ से मुस्कुराता है, अल्लाह ताला बंदे के किस अमल से खुश होता है, अल्लाह ताला को सबसे प्यारा अमल कौन सा लगता है। तो यही तरतीब आज अगर हमारे पास हो तो इंशाअल्लाह ताला लोग अल्लाह के हुक्मों को सुन के भागने की बजाय खुद पूछने वाले बन जाएंगे कि हम क्या करें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इतनी सिफतों वाले रब ने, कि जिसने एक आयत में इतनी आयतें जमा करके बता दिया कि मैं ही तुम्हारी ज़रूरत हूँ, मोहब्बत भी मुझसे करनी है, डरना भी मुझसे है, क्योंकि ईमान खौफ और उम्मीद दोनों का नाम है। तो इतने प्यारे रब ने तुम्हें क्या हुक्म दिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, या नोट कीजिएगा कि लफ्ज़ अन्नास है, इंसानियत को खिताब है। सिर्फ ईमान वालों को इन कामों का हुक्म नहीं, बल्कि हर वो बंदा जो अपने आप को इंसान कहता और समझता है उसको ये हुक्म है। क्या करो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, खाओ उन चीज़ों में से जो ज़मीन में है, हलाल और पाकीज़ा। ज़मीन की चीज़ें हलाल और तय्यब, लफ्ज़ हलाल हा लाम लाम से है, हल्ला या हल्लू कहते हैं गिरा खोलने को। हम किसी चीज़ को जब ये कहते हैं कि ये हलाल है, तो मतलब क्या है कि इसकी गिरा खुल चुकी है, अब खा लो, नॉट नहीं लगी हुई। इसीलिए हलीला बीवी को भी कहते हैं, क्योंकि वो मर्द के लिए हलाल हो चुकी होती है। अल्लाह ताला ने पाबंदी खोल दी, हटा दी, गिला खुल गई, ये हलाल है, खा सकते हो। और तैयब का लफ्ज़ तीब से है, तीब खुशबू को कहते हैं, तो ये याबा, इसी से फिर पाकीज़गी के माने भी हैं इसमें। हलालन तय्यबन से दो चीज़ें पता चलती हैं, कुछ चीज़ें अपनी ज़ात के अतबार से हलाल होती हैं, यानी इंग्रेडिएंट वाइज, मसलन के उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट या कोई ऐसा उनसर ना हो जो हराम हो, मसलन किसी में खिंजीर की कोई चीज़ ना हो, कोई और इसी तरह की चीज़, इसको कहते हैं हलाल बिज़ात, ज़ात के साथ हलाल। और दूसरा होता है हलाल मीन्स के ज़रिए, असबाब के ज़रिए, जिस तरीके से आपने माल कमाया वो कैसा था। मसलन ब्रेड बिल्कुल हलाल है, उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं कि जो सही ना हो, लेकिन उसको जिस माल से ख़रीदा गया वो अल्लाह की नाफरमानी का था, तो ये दोनों उसमें आते हैं। اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ کلو مما، مما سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کی ہر چیز ہی نہ کھا جاؤ، سم آف کھاؤ، من تبیس کے لیے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کو کھاؤ، حلالاً طیباً، جو تمہارے لیے حلال ہیں. ایک روایت میں آتا ہے سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں پر منحصر ہے، حلال کھانا، فرائض کا ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. خطوات کا لفظ خطوۃن کی جمع ہے، خطوہ، خا توئے واو. اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہو. چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ ایک پاؤں رکھتے ہیں پھر دوسرا اٹھا کے آگے رکھتے ہیں، کوئی دونوں پاؤں اکٹھے تو نہیں اٹھا کے چلتا، جمپ کرتے ہوئے جیسے کچھ بچے چلتے ہیں نا، پاؤں اکٹھے رکھے پھر اٹھے پھر اچھلتے ہوئے. تو یہ جو فاصلہ ہے نا، ایک قدم سے دوسرے قدم کے بیچ کا فاصلہ، اس کو خطوہ کہتے ہیں عربی میں. اور شیطان کے خطوات، کیا شیطان کے قدم ہوتے ہیں؟ کیا اس کے نقش قدم پہ کوئی چلتا ہے؟ مراد کیا ہے اس سے؟ یہ لفظ قرآن پاک میں غالباً تین دفعہ آیا ہے، اگر میں غلط نہ یاد رکھوں. ایک جگہ یہاں ہے، پھر سورۃ نور میں بھی ہے، اور شاید کہیں تیسری جگہ پہ بھی ہے. شیطان کے قدموں سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھا جائے تو یہ لفظ محاورہ لگتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں فلاں کے نقش قدم پہ چلنا. تو کیا ہم اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ کسی کے فٹ سٹیپ پہ قدم رکھنا نہیں، مراد یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ نہ کرو. بالکل اسی طرح شیطان انسان کو بہکانا چاہتا ہے. ادھر خطوات شیطان سے مراد شیطانی اعمال اور افعال ہے جو غلط طریقے کے وہ کرتا ہے، اور یہاں اس کا خطوہ کیا ہے کہ حرام کو حلال بنا کے دکھاتا ہے اور خبیث کو طیب بنا کے دکھاتا ہے. سورت نور میں جب یہ لفظ آئے گا تو وہاں اس کا معنی وسپر ہے، جو دل میں اٹھتے ہیں خیالات، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمتیں لگی تھی اس ضمن میں وہاں آیا. تو گویا کہ موقع کی مناسبت سے غلط کام کرنے کا جو دل میں شوق آنے لگتا ہے نا، وہ اصل میں شیطان کا ڈالا ہوا خیال ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ غلط کام کر جاتے ہیں. کیوں نہ شیطان کے نقش قدم پہ چلو؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. ایک ہوتا ہے عدو، دشمن، لیکن عدو مبین کیا ہے؟ جو برسر عام کہتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے، پورا یقین رکھو وہ تمہارا دشمن ہے. کیونکہ جب کسی کو کوئی چیلنج کرتے ہیں نا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، ذرا گھر سے نکل کے دیکھو، تو اس وقت انسان زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ اچھا میرے پیچھے میرا دشمن لگا ہوا ہے. اور بنیادی طور پہ یہاں اس رواج کی طرف اشارہ ہے جس کا شکار مکہ والے تھے. مکہ والوں میں، خاص طور پہ عرب میں اور خاص طور پہ مکہ والوں میں، بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو چھوڑنے کا رواج تھا، جن کو ذبح کرنا حرام سمجھتے، کسی کے اوپر سواری کرنا حرام سمجھتے، کچھ جانوروں کا دودھ نہ نکالتے. اس کی ساری تفصیلات سورۃ الانعام اور سورۃ مائدہ میں آئیں گی. کسی کو سام، حام، وسیلہ، صائبہ کہتے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے. آج بھی کچھ جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ جانوروں کو قبروں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. کچھ گائے اور بھینسیں کھلی پھرتی ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فلاں بابا جی کی ہیں، یہ عبد القادر جیلانی کی گائے ہیں. اب جانور ہے، اس کے جسم سے دودھ نکالنا چاہیے، فطرت ہے، نہیں نکالیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ نہیں نکالتے، کہتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہیں، یہ بزرگ ہیں، اس لیے ایسا نہیں کریں. پھر اس طرح بعض وقت کچھ بچے پیدائشی طور پہ چھوٹے سر کے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کسی جگہ چھوڑ آتے ہیں اور فلاں جگہ کے یہ چوہے ہیں اور اس طرح کی باتیں. یہ ساری چیزیں اس دور میں بھی کچھ طرح سے تھی، آج بھی ایسی ہے. جو شخص ان میں سے کسی کام کا مرتکب ہے، گویا کہ وہ شیطان کے قدموں پہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ واردات بتایا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو یہی حکم دے گا تم کو کہ برے کام کرو اور بے حیائی کرو. اور وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. یہ سٹیپس ہیں. یہاں لفظ سو کو دیکھ لیجئے، سو ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند آدمی کو دکھ ہو. سو غم کو بھی کہتے ہیں، دکھ کو بھی کہتے ہیں، سوتا کہتے ہیں لاش کو، ڈیڈ باڈی کو، کیونکہ اس کو دیکھ کر بھی انسان کو گھن آتی ہے. और अलफ़ख्शा का लफ्ज़ फ़ा ख़ाशीन बेहयाई से, ख़ास तौर पे जब अलफ़ख्श हो तो इससे मुराद ज़िना होता है, और ख़ास तौर पे जब यहाँ सू के साथ आया है तो फिर सू से मुराद होती है मुतलक मासियत यानी हर किस्म के गुनाह, और फ़ख्शा से मुराद होते हैं कबीरा गुनाह और हर वो गुनाह जिसका ताल्लुक ज़िना के साथ हो। शैतान तुम्हें हुक्म कैसे करता है? इन्नमा या मुरुकुम से यहाँ मुराद है वसवसा डालता है। हुक्म शैतान का क्या होता है? वसवसा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि आदम के बेटे के दिल में एक शैतानी इल्हाम होता है और दूसरा फरिश्ते का इल्हाम होता है। शैतानी वसवसे का असर ये होता है कि बुरे काम करने के फ़ायदे सामने आने लगते हैं, यानी इंसान ये सोचने लगता है कि बुरे काम करूंगा तो बहुत फ़ायदे हासिल करूंगा और हक़ को झुठलाने की राहें खुलती हैं, और फरिश्ते के इल्हाम का असर खैर और नेकी पर इनाम और फलाह का रास्ता और हक़ की तस्दीक पर कल्ब का मुतमईन होना होता है। क्या पता चला कि शैतान के इल्हाम का असर क्या होता है? कि गुनाह करना अच्छा लगता है, हक़ को झुठलाना आसान हो जाता है। फरिश्ते के इल्हाम का नतीजा क्या निकलता है? कि खैर और नेकी पर इनाम मिलने का यकीन होने लगता है, अल्लाह के वादों पर यकीन आ जाता है और हक़ की तस्दीक पर दिल मुतमईन हो जाता है। कुरान पाक में आता है फलहमहा फजूरहा व तकवाहा, यही है वो, हमने इल्हाम किया फजूर उसका और तकवा उसका, यानी हर बंदे के अंदर एक गुनाह की कैफियत होती है और एक नेकी की, और हर लम्हे ये हो रही है। नमाज़ पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, पढ़ने का ख्याल कौन डाल रहा है? फरिश्ता। ना पढ़ने और डिले करने का ख्याल कौन डाल रहा है? शैतान। और ख़ास तौर पे हलाल और हराम के मामले में भी ये बात है। फिर उसके बाद ज़ुबान खुलती है अन तकूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। अगर आप इस सारी तरतीब को सामने रखें ना तो पता क्या चला कि पहले शैतान सू में मुबतला करता है, छोटे छोटे गुनाह कराता है, मुतलक कुछ नहीं होता कुछ, अल्लाह ताला ऐसे थोड़ी हैं, वो तो बड़े नर्रहीम हैं, बड़ा प्यार करते हैं बंदों से। फिर इंसान उसका आदी हो जाता है, कुछ अरसा और गुजरता है ना तो फिर फुहश में मुबतला करता है। चलो ना क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो बड़ा काम, इससे क्या, कभी कभी तो करना चाहिए और तुम कोई रोज़ थोड़ी करोगे। ये दूसरी सीरत होती, इस वक्त भी इंसान डर रहा होता है कि मैं सही काम नहीं कर रहा, लेकिन जब इसका आदी कर देते ना तो उसके बाद फिर अगला जो सबसे ख़तरनाक मरहला है वो क्या है? अन तकूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून, ज़ुबान खुलती है। क्या कि फिर इंसान अपने उस गलत काम को जस्टिफाई करने लगता है, उसकी लॉजिक्स पेश करता है, उसके बारे में लोगों को दलाइल देता है, लोग क्या होता है भला, और ये बड़ा ख़तरनाक मौका होता है, इंटेलेक्चुअल किस्म की बहसें कराता है। नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, लो सूर के गोश्त में क्या है, आज के दौर में तो वो पाक है और आज के दौर में हम सूद के बगैर नहीं रह सकते, और पर्दा तो दिल का है। ये जुमले जो है ना, ये हैं अन तकूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। इंसान की अकलमंदी क्या है कि वो पहले स्टेप पे रुक जाए, सूब ही अपने आप को पकड़ ले, नहीं तो ज़रूर फुहश का शिकार होगा और फुहश के बाद फिर वो ज़ुबान खोलेगा। और जब बंदा गुनाह करे और अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला उसके बचने का रास्ता निकाल देगा, लेकिन गुनाह करके उस गुनाह को नेकी समझने लग जाए तो फिर वो नहीं बचता। और ख़ास तौर पे जब लोग ये कहने लगे कि आज के दौर में तो हम बच ही नहीं सकते, तो फिर नतीजा क्या होगा कि उसके बाद इंसान फिसलता ही जाएगा। सारी आयत का खुलासा क्या है कि शैतान को दुश्मन समझ के उसके खुफिया वारों से बचना है, हलाल और तैयब का एहतमाम करना है, और अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक इजहार क्या है कि उसकी बात भी मानी जाए। अब यहाँ तक तो बात हुई आम हालात में, मैंने आपसे तذکرہ किया कि ये आयात ख़ास तौर पे अरबों के एक रिवाज पे थी कि ये क्या करते हो, अल्लाह ने इन जानवरों को आज़ाद पैदा किया, इनको तुम क्यों बांध देते हो और तुम क्यों इनका गोश्त नहीं खाते और इनके ऊपर सवारी नहीं करते। तो जब कभी उनसे ये बातें कही जाती थी ना तो उसका जवाब क्या देते थे, ये अगली आयत में हम देखेंगे। आज के हालात को सामने रखते हुए क्या वह इज़ा कील लहुम, और जब कहा गया उनसे, किनसे? मक्का वालों से, इत्तबेउ पैरवी करो, इत्तबा करो, फुटस्टेप पे चलो, मा अनज़लल्लाहु, उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया यानी इस नबी के ज़रिए से जो अहकामात नाजिल हो रहे हैं उसको मानो, अल्लाह के नाम पे जानवरों को ज़िबा करो, बुतों के नाम पे मत करो, रस्म व रिवाज और ख़ानदान बिरादरी का नाम लेकर एक दूसरे के पीछे ना लगो। लेकिन जवाब क्या मिला? कालू, वो कहते हैं। कौन कहते थे? सिर्फ मक्का वाले? नहीं, आज भी लोग कहते हैं। ऐसी रस्में और रिवाज जो नस्ल दर नस्ल करते आए, जो किसी मुआशरे में अल्लाह के दीन से ज़्यादा मशहूर हो चुके होते हैं, जड़ों के अंदर उसका असर पहुंच चुका होता है। जब लोगों को वो रस्में छोड़ने को, वो तौर तरीके तोड़ने को कहा जाए तो क्या कहते हैं? कालू, बल नत्तबियु मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, बल्कि हम पैरवी करेंगे उसकी जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। ये है एक सिर्फ वाहद उनके पास दलील किसी काम को करने की, कि हम ये काम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया। लफ्ज़ अल्फ़ैना जो है लफ़्वुन से है, लाम फा और वाव इसका रूट है। इत्तफाकन किसी चीज़ को पा लेना, अज खुद किसी चीज़ को पा लेना, हिजाब दूर होने पर किसी चीज़ को मौजूद पाना। कहते थे कि हम ये काम इसलिए करते हैं कि हमारे बाप दादा ये काम करते थे। बस यही है इसकी दलील। ना कुरान की दलील, ना सुन्नत की दलील, ना हदीस का हवाला। ये क्यों कर रहे हो? मेरी माँ करती थी, मेरी नानी करती थी, मेरी दादी करती थी, और बस यही बात बहुत है। ये कुछ लोगों की वाहद दलील होती है। अल्लाह ताला इनके इस जवाब पर कमेंट देते हैं। अवलौ कान आबाउहुम ला याकिलून शैया, और क्या अगरचे उनके बाप कुछ अक़ल ना ही रखते हों। पहली बात, नंबर एक, माँ बाप को अक़ल ना हो, और वला यहतदून, और हिदायत पे ना चले हों। दो बातें हैं माँ बाप की पैरवी करने के जवाब में, जब उन्होंने ये कहा कि माँ बाप की करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे, अच्छा तुम उनकी बातें मानते जाओगे अगरचे तुम्हारे माँ बाप के पास अकल ना हो। क्या मतलब? अल्लाह ताला उनकी बेइज्जती कर रहे हैं? या आज किसी को ये कहना कि देखें जो काम आप कर रहे हैं अकल से काम लेते हुए करें, आपके माँ बाप ने ये कर लिया अगर कोई गलती से या हो गया, तो क्या फिर ये बात अब आप भी करते जाएंगे? ये असल में उनकी बेइज्जती करना मकसूद नहीं है यहाँ, बल्कि यहाँ बताना ये मकसूद है कि जब अक्ल इंसान को अल्लाह के करीब ना करे, जिसकी अक्ल पर खानदानी रिवायात के पर्दे पड़ चुके हों, बाप दादा का नाम लेकर अल्लाह के हुक्म से हटे, फिर वाकई वो बेअक्ल है। चाहे वो दुनिया में कितना कामयाब है, कितना मारूफ है, कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन अक्ल वही अक्ल सलीम है जो बंदे को अल्लाह तक पहुंचाए। हम ये बात कई बार कर चुके हैं अभी तक के सबकों में, कि अल्लाह तक पहुंचने के चार बड़े सोर्सेस में से एक बहुत बड़ा सोर्स अक्ल है। इसीलिए तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें गिनवा दी कि देखो इन चीज़ों को देखकर भी अल्लाह को नहीं पहचानते। तो गोया के जिस अक्ल को तुमने अपने बड़ा होने का जरिया समझा हुआ है, वो अक्ल बड़ी नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें अल्लाह का हुक्म तोड़ने पर मजबूर करती है। और दूसरी बात है कि वला यहतदून, उनको हिदायत ना हो, उनको पता ही नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि आबाओ अजदाद की तकलीद और इत्तेबा को इसलिए मना किया गया कि ना उनको अक्ल थी ना हिदायत थी। और हिदायत से मुराद वो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए, और अक्ल से मुराद वही अक्ल है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान को दिया। अब यहाँ से आगे वो लोग जो ये जवाब देकर मुतमईन हो जाते हैं कि ये काम करने की वजह यह है कि हमारे बाप दादा और बड़े करते थे, अल्लाह ताला कहते हैं उनकी मिसाल क्या है? वह मसलुल्लज़ीन कफरू, और मिसाल उन काफिरों की। यहाँ काफिर कौन है? सोचिए, अल्लाह को ना मानने वाले? नहीं, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बाप दादा के तौर तरीकों को सही समझने वाले, अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाले। इनकी मिसाल कैसी है? कमसलिल्लज़ी, मानित मिसाल उस शख्स की, यनएकु, जो चिल्लाता है। यनएकु का लफ्ज़ जो है नायका से है, नून عین قاف نائق، نائق کہتے ہیں بلند آواز سے گلا پھاڑنا، کوے کا کائیں کائیں کرنا، اور چرواہے کا اپنے جانوروں کو بلانا، شیفرڈ منہ سے کچھ آوازیں نکالتے ہیں جانوروں کو جمع کرنے کے لیے، کہا ہا کی ہو ہی، کچھ اس طرح کی ساؤنڈز ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی معنی نہیں ہوتے، بس جانوروں کو جمع کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ین اقو بیما لا یسمو الا دعان، جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے کے، وہ ندان اور چلانے کے، سمن بکمن امیون، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ عقل نہیں رکھیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو بلا سوچے سمجھے تقلید کرتا ہے بڑوں کی، اور انہی کاموں کو کرنا چاہتا ہے جو بڑے کرتے تھے بغیر اس کی سند کے، تو اس کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی کہ جو بغیر سوچے سمجھے چرواہے کے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو سن کے چل پڑتا ہے. اصل میں یہاں جانوروں سے تشبیہ دی گئی. جانور کی عادت کیا ہوتی ہے کہ وہ بس چرواہے کے منہ سے آواز سن کے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاص آواز نکالتے ہیں جانوروں کو پالنے والے، اور سارے جانور اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. پرندوں کو خوش خوش کر کے پکارا جاتا ہے. اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس بلا سوچے سمجھے اس کی آواز سن کے چل پڑتے ہیں. وہ لوگ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، کتاب ہدایت کے پاس نہیں آتے، وہ اپنے بزرگوں کے عمل کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں. اسی لیے سمن بکمن امیون، کان ہیں لیکن حق سنتے نہیں ہیں، زبان ہے حق بولتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں حق نظر نہیں آتا ان کو، اور عقل سے کام کیے بغیر تقلید کے بندوں میں پھنسے جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں سے عاری ہو چکے ہیں. اس مثال سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم بات سمجھ جاؤ، لیکن وہ بات نہیں سمجھتے. یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے ندا. دعا کہتے ہیں با معنی پکار کو. یہی لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے سے کچھ مانگنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ندا کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ با معنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی. مثلا ایک آواز آتی ہے جیسے دیکھیں کھٹ، اب یہ ندا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، لیکن اب میں بول رہی ہوں تو یہ ایک با مقصد ہے. تو دعا با معنی ہوتی ہے، ندا کبھی کبھی با معنی ہوتی ہے، کبھی کبھی بے معنی ہے، کبھی کبھی دعا کے لیے بھی آتا ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ سورت مریم میں استعمال ہوا ہے، ندان خفیہ، چپکے چپکے پکارنا. پھر دوسرا ایک فرق ہے ان دونوں میں، ندا جو ہے وہ کسی کے سامنے ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ بغیر کسی کے سامنے کیے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان لوگوں کی یہ بات بتا دی کہ بلا سوچے سمجھے یہ چل رہے ہیں. اب یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی، لیکن اس پہ کچھ باتیں ہیں عمل کی، کہ کیا پھر باپ دادا کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے، سب غلط ہے. تو یہاں دو معیار مل گئے. نمبر ایک، لا یعقلون شیئا، ہر وہ چیز جو عقل میں بھی نہ سمائے. یہ کر کیوں رہے ہیں؟ آپ ذرا کسی بھی معاشرے میں پھیلی ہوئی رسومات کو دیکھیں، عقل سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہوتا. کوئی آپ میں سے مثال دینا چاہے گا؟ کیونکہ وہ تو مکہ والے تھے، انہوں نے تو جانوروں کے نام سے کچھ باتیں بنائی ہوئی تھی. کیا آج کے دور میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ چلیں اب ان کی اس مثال کو دیکھتے ہیں کہ بکرے کو بہت دور لے جا کے کسی درگاہ پہ ذبح کر سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہو جائے گا. اب آپ اس ایک عمل کو ان دونوں معیارات پہ دیکھیے، عقل میں یہ بات آتی ہے؟ بابا جی کے پاس کچھ ہے؟ اگر بابا جی کے پاس بیٹے ہوتے تو ان کے اپنے کتنے کو ہوتے، اور کیا وہ دور کسی درگاہ میں یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوتے؟ عقل میں نہیں آتی. چلیں اس عمل کو آپ کہتے چھوڑے عقل میں نہیں آتی، نہ سے ہی دیکھتے ہیں، قرآن اور سنت میں ہے، پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ کے نبی کے عمل پڑھ لیں. آپ کے تو اپنے بیٹے نہیں تھے، پیدا ہوتے تھے تو فوت ہو جاتے تھے. آپ نے تو کبھی حضرت عائشہ کو نہیں کہا کہ جاؤ ذرا فلاں قبر پہ جا کے کوئی دعا مانگو. حضرت عائشہ نے تو ایک موقع پہ کہا، اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا مانگوں؟ उस वक्त भी नहीं आपने कहा कि आयशा बच्चा मांग लो। हमारे यहाँ तो बच्चा मांगना एक बहुत बड़ा फर्ज भी होता है, और लगता है कि जिसका औलाद नहीं उसकी सारी नेमतें खत्म हो गई। लेकिन आपने क्या कहा कि अगर तू लैलतुल कदर को पा ले तो क्या मांग, कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफ़ुअन्नी, तू माफ करने वाला है तो हेब्बुल अफ्वा माफी को पसंद करता है, लिहाजा फाफ़ुअन्नी मुझे भी माफ कर दे। तो लिहाजा अब ना ये बात अकल में आई ना हिदायत से मिली। कोई और मिसाल दीजिए। चलिए, मरने वाले की साले सवाब के लिए जो चीज़ कुरान पढ़ के या किसी और सूरत में देते हैं, इसी मेयार पे परखें। आप एक लाइन लगाएं अपने सफ़े में, एक तरफ लिखें अकल और दूसरी तरफ लिखें हिदायत। हिदायत वो है जिसका सोर्स मिल जाए, कोई अमल नबी सल्लम का मिले या कुरान और कुरान की कोई आयत मिल जाए या हदीस मिल जाए। और अकल से विजडम को सोचिए। एक शख्स चला गया, दुनिया से गया, आपने फरमाया कोई जा नहीं सकता जब तक अपने हिस्से की नेकियां नहीं कर लेता, जब तक वो सारे कदम नहीं चल लेता, जो उसने खाना था खा चुका। ये भी कमल देखा है कि लोग मुर्दे को खुश करने के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ें पकाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, और उनका ख्याल है कि उसकी रूह आके ले जाएगी। तो क्या वो रूह जो दुनिया से चली गई वो वापस आएगी? ना अकल में आती हैं ये बातें, ना कुरान और सुन्नत से मिलती हैं। तो हम सब के पास आज सारे तासुबात से ऊपर उठते हुए एक मेयार मिल गया कि हर वो चीज़ जिसकी सही दलील मिल जाए हिदायत के ज़रिए से उसको मानना है, और जो अकल में आ जाए। हाँ देखिए, अकल में आ जाए लेकिन कुरान और सुन्नत से उसकी दलील ना मिले फिर भी नहीं करनी। लेकिन ऑपोजिट वे है, कुरान और सुन्नत में आई है और अकल में नहीं आ रही फिर भी माननी है। ये फ़र्क नोट कीजिए, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। दो में आ रहे हैं, अकल और हिदायत। हिदायत के सोर्स से उसकी दलील मिल जाए और अकल में ना आए, जैसे मसाह करते हैं और पाँव को ऊपर से छूते हैं, पाँव का मसाह करते हैं जब, तो नीचे से नहीं छूते। अब ये बात अकल को नहीं आती, अकल में नहीं आती, मानेंगे? इसी तरह कुछ चीज़ें अकल में आ जाती हैं। मसलन लोग कहते हैं क्या हरज है, लोग बैठ के तो बातें करने की बजाय कुरान ही पढ़ लेते हैं ना, कोई गुनाह थोड़ी है। अब ये अकल में आ रही है लेकिन इसकी दलील नहीं मिल रही। इसके बगैर हर वो चीज़ जो अलग है उसको पीछे कर दिया जाए। फिर एक सवाल आ जाए इसी पे। अब देखिए कि बाज़ लोग जो आंखें बंद करके आज आयमाए कराम के पीछे चलते हैं, ठीक है वो अपने दौर में मेहनत करके शऊर के साथ काम करके गए, वो गुमराह नहीं थे, वो हिदायत पे थे। लेकिन किसी इमाम को सिर्फ ये सोच के मान लेना कि उसकी हर बात ठीक है और उसको हर बात पहुंच गई, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। क्या आप समझ सकते हैं कि एक इंसान का इल्म इतना मुकम्मल था कि वो पूरे का पूरा इल्म ले चुका? ये तो खुद अपनी ज़िंदगी में कह कर गए थे कि अगर हमारे किसी अमल में तुम्हें कमी दिखे या हमारे अमल के ख़िलाफ़ कोई हदीस मिल जाए, हमारा अमल छोड़ देना और अल्लाह के नबी को ले की बात को ले लेना, हमारा कॉल दीवार पे मार देना और अल्लाह के नबी की बात को ले लेना। तो ज़रूरत क्या है इस बात की कि आयमाए कराम की हर वो बात लेंगे जिसको हम दलील के साथ देखेंगे। सूरत यूसुफ़ की आयत नंबर 37-38 में भी हज़रत यूसुफ़ ने यही कहा था कि इन्नी तरक्तु मिल्लत कौम ला युमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। मैंने इन लोगों की मिल्लत और मज़हब को छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जो आखरत के मुनकर हैं, और वत्तबातु मिल्लत आबा इब्राहिम व इसहाक व याकूब, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम इसहाक और याकूब के रब की इबादत की। तो तकलीद मुकम्मल तौर पे हराम नहीं है लेकिन हर वो चीज़ गलत है जिसकी सनद नहीं मिलती या अल्लाह के नबी की किसी बात से मुख्तलिफ होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि हमें किताब हिदायत से फ़ायदा लेने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक यहाँ पे पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألف أفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا